वो कहते हैं ना कि एक आईना हमेशा सच बोलता है। एक आईने के अंदर इतने राज होते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाते। दोस्ती भी आईने की तरह ही होती है। एक अच्छा दोस्त आईने की तरह ही हमें हमारे ऐब यानी खामियां बताता है, हमें सुधारता है और साथ ही हमारी परेशानियों में हमारा साथ भी देता है। पर कैसा हो अगर वही दोस्त तुम्हें किसी ऐसी जगह ढकेल दे जहां से तुम्हें कोई पुकारते हुए भी सुन नहीं सकता और जहां पे तुम्हारे वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता। और आज एक कहानी हम भी लेकर आए हैं। हिना और आयशा दोनों पक्की सहेलियां थी। हंसना गाना खेलना कूदना बाहर आना जाना शॉपिंग करना हर चीज दोनों एक ही साथ किया करती थी। आयशा को आए दिन कोई ना कोई उसकी खूबसूरती को लेकर कॉम्प्लीमेंट दिया करता था। वो पूरे कॉलेज में सुंदर होने के साथ साथ टोपर होने के लिए भी मशहूर थी। हिना भी कम खूबसूरत नहीं थी। गोरा रंग, लंबे काले बाल, मीठी आवाज, चेहरे पर मासूमियत, पर फिर भी ना जाने क्यों हिना आयशा से हमेशा खुद को कम ही मानती थी और इसी वजह से वो कई बार अपना मन खराब कर लिया करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ हर छोटी बड़ी बात शेयर किया करते थे। आयशा अक्सर बताया करती थी कि उसे एक लड़के से प्यार है, पर वो लड़का कौन है उसने ये बात हिना को कभी भी नहीं बताई। हिना की माँ नहीं थी और पिता की आमदनी भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो अपनी बेटी का हर शौक पूरा कर सके। इसी के विपरीत आयशा की माँ और पापा दोनों ही सरकारी नौकरी किया करते थे और अपनी बेटी का हर एक शौक पूरा भी किया करते थे। वो हिना को भी अपनी बेटी की तरह ही मानते थे। हिना के पास जब पैसे नहीं होते थे तो आयशा उसे अपने पैसों में से चीजें खरीद कर दिया करती थी। कई बार ये चीज उसके पिताजी को पसंद नहीं आती थी। एक दिन हिना के घर एक बहुत अमीर घराने से रिश्ता आया। उसके पिता का तो जैसे मानो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। हिना भी बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपने सपनों का राजकुमार उसकी जिंदगी में आता दिखाई दे रहा था। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हिना के घर उसी लड़के के माँ बाप रिश्ता लेकर आए जिसे आयशा पसंद किया करती थी। ये बात हिना बिल्कुल नहीं जानती थी। वो मन ही मन अपनी शादी के सुंदर सपने सजाने लग गई। जिस लड़के का रिश्ता हिना के घर आया था उसका नाम विशाल था। विशाल बहुत ही समझदार इंसान था। उसे भी हिना उतनी ही पसंद आई थी जितना विशाल हिना को पसंद आया। एक दिन हिना ने विशाल के बारे में आयशा को बताया और जाहिर था आयशा बहुत खुश हुई। पर जब हिना ने विशाल की फोटो आयशा को दिखाई तो उसके मुंह से हंसी तो मानो हवा की तरह ओझल हो गई यानी गायब हो गई थी। फोटो देखकर वो कुछ ना बोली और वहां से चली गई। हिना को कुछ समझ नहीं आया पर उसने ये नजरअंदाज कर दिया। अब धीरे धीरे उनका रिश्ता पहले जैसे ना होकर थोड़ा अलग सा हो गया, जैसे मानो अब उनमें दूरियां आ गई हो। आयशा जब मंदिर जाया करती थी तो उसे एक औरत हमेशा वहां भीख मांगती हुई दिखाई पड़ती थी। कई बार जब आयशा उसके पास से गुजरा करती थी तो वो औरत उसकी ओर देखकर बस यही कहा करती थी, तुझ में जो बात है वो सिर्फ मैं जानती हूं, एक बार मिल तेरी किस्मत मैं बदलूंगी, जो तेरा है वो वापस तेरे पास लौट आएगा। पर आयशा उसे नजरअंदाज करके वहां से चली जाया करती थी। विशाल का ख्याल आयशा अपने मन से चाहकर भी नहीं हटा पा रही थी। उसे कहीं ना कहीं हारा हुआ महसूस होने लगा और उसमें बदले की आग पनपने लगी। काफी दिनों बाद जब वही भिखारन आयशा को फिर से दिखी तो उसने उस औरत का पीछा किया। उसका पीछा करते करते हिना एक जंगल के रास्ते पहुंच गई। उसे उस रास्ते में जाने से डर तो लग रहा था पर उसके दिमाग में उस औरत की बात बार बार घूम रही थी। वो किसी भी हाल में विशाल को पाना चाहती थी। कुछ दो पलों में ही आयशा की नजरों से वो औरत गायब हो गई। आयशा ने जैसे ही नजर घुमाकर देखा तो वो औरत ठीक उसके पीछे खड़ी हुई थी। फटी हुई सफेद साड़ी पहने वो औरत आयशा की आंखों में आंखें डालकर कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। आयशा इतनी घबरा गई कि वो बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो वो उस औरत के झोपड़े में लेटी हुई थी। और उठते ही उसने कहा, ये तुम मुझे कहां लेकर आई हो, मैं कहां हूं? उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, तेरी किस्मत में लिखा जिसने छीना है वो वापस नहीं चाहिए तुझे। आयशा ने जवाब में कहा, मैं उसके लिए कुछ भी करूंगी। औरत ने तुरंत सवाल किया, कीमत बहुत भारी पड़ेगी, क्या तू उसे चुका पाएगी? आयशा बोली, हाँ मैं चुका दूंगी, बोलो बोलो क्या चाहिए। औरत चुप हो गई और एक कदम से हंसकर बोली, हाँ एक रूह। आयशा ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें अपनी रूह नहीं दे सकती, पर मैं तुम्हें किसी की लाकर जरूर दे सकती हूं, इससे मेरा बदला पूरा हो जाएगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। औरत जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अगर तुझे अपनी चाहत को पाना है तो तुझे इस बात पर ध्यान देना होगा कि इसमें तेरी जान भी जा सकती है। आयशा बोली, मंजूर है, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। औरत ने उसे 3 दिन के अनुष्ठान की विधि समझाई और कहा कि एक बार अगर उसने ये टोटका किया तो वो उसे किसी कीमत पर पलट नहीं सकती। आयशा बदले की आग में इस कदर जल रही थी कि उसने बिना सोचे समझे हां कर दी। औरत बोली, ये विधि हमें भगवान को नहीं बल्कि शैतान को खुश करने के लिए करनी होगी। आयशा हिचकिचाती है पर हां कर देती है। अनुष्ठान के लिए उसे नंग अवस्था में बैठने के लिए बोला जाता है। अनुष्ठान आधी रात को करना था, इसलिए आयशा अपने घर झूठ बोलकर उस औरत के पास चली आती है। वहां हिना के घर उसके और विशाल के घर वाले खुशी खुशी उन दोनों की शादी की तारीख पक्की कर देते हैं। दोनों की खुशी का अब कोई ठिकाना ही नहीं होता। कहीं ना कहीं हिना के मन में आयशा के प्रति जो भी जलन की भावना थी वो अब खत्म हो चुकी थी, पर आयशा हिना और विशाल की जिंदगी को अपने हाथों में थामे बैठी थी। 3 रातों तक अनुष्ठान ऐसे ही चलता रहा था। पहले अनुष्ठान की रात आयशा को 2 जानवरों की बलि देने के लिए कहा गया तो उसने 2 बकरों की बलि दी और उनका दिल निकाल कर शैतान को भेंट के रूप में दे दिया। अगली रात आयशा ने हिना और विशाल जैसी दिखने वाली 2 गुड़िया बनाई और कुछ ऐसे मंत्र फूके जिसकी वजह से विशाल और हिना के बीच में बिना किसी बात के कटाक्ष पैदा होने लगी। 3रे दिन आयशा के मन में खुशी जागी क्योंकि विशाल उससे खुद बात करने आया और उसने हिना के बारे में आयशा को बताया कि हिना के साथ शादी करने के फैसले को लेकर उसका मन डगमगा सा रहा है। वहीं जब हिना से आयशा की बात हुई तो हिना ने भी आयशा से विशाल के बारे में बात की, पर वो अपनी शादी फिर भी नहीं तोड़ना चाहती थी। ये सुन आयशा को गुस्सा आया, पर उसने अपना मन शांत रखा और अनुष्ठान की आखिरी रात को उस औरत ने आयशा को रात के 3 बजे हिना के आंगन में विशाल की गुड़िया को दफन करके आने के लिए कहा। आयशा ठीक वैसा ही करती गई जैसा जैसा उसे उस औरत ने कहा। आयशा तो जैसे मानो अपनी पहचान को पूरी तरह से भूल चुकी, जहां वो रोज दिन में 2 बार भगवान की पूजा किया करती थी और मंदिर जाया करती थी, अब वो देखने लायक हालत में भी नहीं रह गई थी। 3री रात जब वो अनुष्ठान पूरा हुआ तब उस औरत ने आयशा को बताया कि अब से ठीक 1 हफ्ते बाद जब हिना और विशाल की शादी की तैयारी शुरू हो गई तो विशाल खुद पे खुद आयशा की ओर खींचा चला आएगा। वो शादी तोड़ देगा और हिना की जगह पर विशाल आयशा से शादी करेगा। जैसे ही आयशा और विशाल का 7वां और आखिरी फेरा पूरा होगा, हिना की मौत हो जाएगी और उसकी रूह उस औरत की हो जाएगी। शादी को जब 5 दिन बचे थे तो आयशा को खुद के अंदर कुछ ऐसे बदलाव महसूस होने लग गए जो उसने आज तक कभी महसूस नहीं किए थे। वो पूरी तरह से शाकाहारी थी, जैसे अंडा मांस मछली को तो उसने बचपन से कभी हाथ भी नहीं लगाया था, पर अचानक से उसे मांस खाने का मन करने लग गया। शाम को जब आयशा की माँ सूखे हुए कपड़े उतार रही थी तो उन्हें अपने आंगन में मरा हुआ कबूतर मिला। उसे देखकर उसकी माँ अचानक से चिल्ला उठी, हे भगवान ये कैसा अनर्थ है। आयशा अपनी माँ की आवाज सुनकर भागी चली आई और उसने भी वो मरा हुआ कबूतर देखा। रात में जब घर में सब सो रहे थे तो आयशा की माँ फ्रिज से पानी लेने के लिए उठी और उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आयशा की माँ ने आयशा को नहीं बल्कि उसके अंदर पनप रहे शैतान को देखा। आयशा की सुर्ख लाल आंखें जिसमें नफरत भरी हुई थी और उसके हाथ में उस कबूतर का खून लिपटा हुआ था, उसके पंख आसपास बिखरे हुए थे और आयशा उस कबूतर के मांस को कच्चा चबाने लगी थी। ये देखकर उसकी माँ घबरा कर भागने लगी। तभी आयशा ने अपनी माँ की गर्दन को दबोचकर उन्हें मारने की कोशिश की और उसी समय जैसे ही उसके अंदर की आवाज जागी वहीं अपनी पत्नी की आवाज सुनकर आयशा के पिता की नींद खुली तो उन्होंने आयशा को आवाज दी और आयशा ने अपनी माँ को एकदम से छोड़ दिया और फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसे ये एहसास हुआ कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। जैसे तैसे जब रात बीती और बाकी के दिन गुजरे तो हिना और विशाल की शादी का दिन भी आ गया। आयशा भी उनकी शादी में मौजूद थी और सब कुछ देख रही थी। जब फेरे होने शुरू हुए तो आयशा के मन में विशाल को लेकर जितने सपने उनको हवा लग गई। फिर उसकी नजर बेड में छुपी उस औरत पर पड़ी और वो दूर से उसे यही बात कह रही थी, तेरी किस्मत मैं बदलूंगी, जो तेरा है वो वापस तेरे पास लौट आएगा। जैसे ही आखिरी फेरा पूरा हुआ, हिना जोर जोर से हंसने लगी और उसे खून की उल्टी होने लगी। ये देखकर सभी घबरा गए, वो औरत भी जोर जोर से हंसने लगी, क्योंकि जैसे ही हिना ने दम तोड़ा साथ ही विशाल और आयशा की भी मौत हो गई, क्योंकि आयशा ने जो अनुष्ठान किया उसने अपनी हिना की और विशाल तीनों की रूह शैतान को भेंट कर दी थी। इसलिए इस नफरत की आग में तीन जिंदगियां जलकर राख हो गई। तो ये थी हमारी आज की खौफनाक कहानी। आई होप आपको ये जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं ऐसी एक और हॉरर कहानी के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।